नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे newsoneir ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।